उसी रात घर के एक कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। इकबाल, सुल्ताना बेगम और नूर तीनों वहीं बैठे थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई कुछ सोच रहा हो लेकिन कह नहीं रहा। तभी फोन की घंटी बजी। इकबाल ने स्क्रीन पर नजर डाली। फैजान कॉलिंग। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव कर लिया। हाँ बेटा, बोलो, इकबाल ने नरम लहजे में कहा। फॉर्म जमा करवा दिया आपने? फैजान की आवाज में हल्की बेचैनी थी। हाँ बिल्कुल, इकबाल मुस्कुराया। आपने मुझे जहां भेजा था मैं वहीं चला गया। सच कहूं तो मैं बस बैठा ही था, बाकी सारा काम उसने खुद ही कर दिया। वो थोड़ा हंसा। आपकी वजह से लाइन में खड़ा भी नहीं होना पड़ा। अच्छा हुआ, फैजान ने राहत की सांस ली। काम हो गया, यही काफी है। कभी मौका मिले तो उसका शुक्रिया जरूर करना, इकबाल ने कहा। जरूर। एक पल की खामोशी, फिर फैजान ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, अगर नूर जाग रही हो तो क्या मेरी बात करवा सकते हैं? कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। नूर जो पास ही बैठी थी, उसने हल्के से अपने अब्बा की तरफ देखा। इकबाल ने बिना कुछ सोचे फोन स्पीकर पर लगाया और नूर की तरफ बढ़ा दिया। लो, बात करो। नूर ने फोन लिया लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, जैसे वो ये बात करना चाहती नहीं लेकिन मना भी नहीं कर पा रही। हेलो, उसने धीमी लगभग बेमन आवाज में कहा। कैसी हैं आप? फैजान की आवाज अचानक नरम हो गई। मैं ठीक हूं, नूर ने छोटा सा जवाब दिया। आपको कोई काम था? उसका लहजा सीधा था, थोड़ा दूर, थोड़ा रूखा, लेकिन फैजान को उसकी आवाज सुनकर जैसे कुछ हो गया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे खुद समझ नहीं आया ये सुकून है या बेचैनी। वो बस, उसने खुद को संभाला। आपको बेस्ट ऑफ लक कहना था। नूर ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मैं भिजवा सकता हूं, फैजान ने जल्दी से कहा, जैसे बात खत्म ना हो। नहीं, नूर ने तुरंत मना कर दिया। मैं अपने नोट्स खुद बना लूंगी, पहले भी मैं खुद ही बनाती थी। उसकी आवाज में हल्की सी आत्मनिर्भरता थी और शायद दूरी भी। अच्छी बात है, फैजान ने धीमे से कहा। फिर उसने थोड़ा संभल कर बात आगे बढ़ाई। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि आपके पास फोन नहीं है, तो सोचा आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो। नूर ने बिना उसकी बात पूरी होने दिए कहा, अगर जरूरत हुई तो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। फैजान चुप हो गया। फिर भी उसने आखिरी कोशिश की, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो आप किसी भी फोन से मुझे कॉल कर सकती हैं, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा था। नूर की नजरें अब जमीन पर टिक गई थीं। फिर उसने हल्का सा कहा, दूसरा नंबर ऑन करने की बेवकूफी तो आप करेंगे नहीं? उसकी बात में हल्का सा तंज था। क्या मतलब? नूर की आवाज इस बार सीधी थी और तेज भी। उसके साथ ही इकबाल और सुल्ताना बेगम दोनों चौकन्ने हो गए। उन्हें भी लगा बात अब कहीं और जा रही है। फैजान ने एक सेकंड लिया, जैसे शब्द चुन रहा हो। मेरा मतलब ये है, मैंने कहीं पढ़ा था, स्मार्ट गैजेट्स इंसान को उसके मकसद से भटका देते हैं। बस यही, नूर का सब्र टूट गया। इनफ, उसने गुस्से में कहा, मुझे अपना मकसद भी पता है और फोकस भी। उसकी आवाज ऊंची हो चुकी थी। तो प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। स्पीकर ऑन था, हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। इकबाल अपनी बेटी को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे नूर का ये गुस्सा नया नहीं था, लेकिन सुल्ताना बेगम के चेहरे पर नाखुशी थी। उन्हें बुरा लगा क्योंकि वो जानती थी फैजान गलत नहीं कह रहा। दूसरी तरफ फोन के उस पार फैजान का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी आवाज कंट्रोल की लेकिन गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। अगर आपको इतनी समझ है तो तमीज से बात करना भी आना चाहिए। कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। मैं आपको लेक्चर इसलिए दे रहा हूं, उसने इस बार सीधे कहा, क्योंकि आपका फोकस मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। ये सीधा वार था। नूर की आंखों में गुस्सा चमका। क्या मतलब? वो लगभग काटते हुए बोली, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी? हां, इस बार फैजान रुका नहीं। और सुनिए, उसकी आवाज अब ठंडी थी लेकिन खतरनाक सच्चाई लिए हुए। फोन को ट्रेस करना बहुत आसान है। कमरे में बैठे दोनों बड़े एकदम से सतर्क हो गए। अगर आप वापस यूनिवर्सिटी एग्जाम देने जाएं, फैजान धीरे धीरे हर शब्द साफ बोल रहा था, तो अपना फोन ऑन मत कीजिएगा। एक पल की खामोशी, फिर उसने आखिरी बार किया, क्योंकि अगर आपकी लोकेशन ट्रेस हो गई तो सबको पता चल जाएगा।
तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? नूर ने झुंझलाकर कहा। क्योंकि आराम से बात आपको समझ नहीं आती, फैजान का जवाब सीधा था। मतलब मैं बदतमीज हूं? नूर की आवाज में गुस्सा अब साफ था। फैजान एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ आ गया था, अब ये बात और आगे बढ़ी तो सिर्फ बहस होगी, कोई नतीजा नहीं। उसने खुद को रोक लिया। अगर कोई काम हो, उसने ठंडे लहजे में कहा, तो इकबाल चाचा से कह दीजिएगा, वो मुझे फोन कर लेंगे। एक छोटी सी खामोशी, अल्लाह हाफिज, और बिना कुछ सुने फैजान ने कॉल काट दिया। फोन के उस पार कमरे में सन्नाटा फैल गया। नूर ने फोन नीचे रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा अभी भी बाकी था। दूसरी तरफ फैजान कुछ सेकंड तक फोन को देखता रहा, फिर धीरे से उसने सिर पीछे टिकाया और एक लंबी सांस ली। शाम ठंडी थी, हवा हल्की हल्की चल रही थी। उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बेवकूफ लड़की, उसने धीमे से खुद से कहा। उसे खुद समझ नहीं आया, इतनी बदतमीजी के बाद भी उसे बात करके अच्छा क्यों लगा। इधर मुझे क्या जरूरत है उससे बात करने की? नूर अब भी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। समझता है सारी अकल उसी को है, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। उसकी आवाज में नाराजगी थी, लेकिन शब्दों के पीछे एक हल्की सी बेचैनी भी छुपी थी। इकबाल ने प्यार से कहा, चलो बेटा बहुत रात हो गई है, सो जाओ। सुल्ताना बेगम भी उठ खड़ी हुई। हाँ अब आराम करो। दोनों कमरे से निकल गए। कमरे में अब सिर्फ नूर थी और उसके ख्याल। वो वहीं बैठी रह गई। धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा होने लगा और फैजान की बातें दिमाग में वापस घूमने लगी। फोन ट्रेस हो सकता है और इन तीनों के बीच एक ऐसी कहानी बन रही थी। सुबह का वक्त था, घर में हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। जुबैदा बेगम जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई, उनकी नजर सामने पड़े सोफे पर गई और वो ठिठक गई। अरमान वहीं बैठा था, सोफे से सिर टिकाए आंखें बंद किए। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर सोया ही ना हो। उनका दिल कसकर रह गया। धीरे धीरे वो उसके पास आई और कुछ पल बस उसे देखती रही, फिर बहुत नरमी से बोली, अरमान। अरमान ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे अपनी माँ की तरफ देखा। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? उन्होंने चिंता से पूछा। या फिर रात से यहीं बैठे हो? अरमान ने नजरें फेर ली। अगर आप रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसकी आवाज में थकान थी और कहीं ना कहीं दूरी भी। जुबैदा बेगम का दिल और भारी हो गया। मैं रिश्ते के बारे में नहीं पूछ रही, वो उसके पास बैठते हुए बोली, मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ, तुम ठीक हो? अरमान हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी खाली थी। आपको ऐसे ख्याल भी आते हैं? बस यही एक लाइन थी जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैं जानती हूँ, उनकी आवाज कांप गई, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया बेटा। अरमान चुप रहा। लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अब आंसू बहने लगे थे, मुझसे गलती हो गई। ये कहते कहते जुबैदा बेगम रो पड़ी। अरमान एकदम से उठ खड़ा हुआ। माँ प्लीज, उसने घबरा कर कहा। उसे अपनी माँ को इस हालत में देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने तुरंत उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया और खुद भी उनके पास बैठ गया। रोइए मत, उसकी आवाज नरम हो गई थी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जुबैदा बेगम ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। शुरू से ही मैं रेहान को देखती आ रही थी, जुबैदा बेगम ने भरे गले से कहा। वो हर काम में परफेक्ट था, अपने काम पर पूरा ध्यान, हर बात में सटीक। ऐसा कोई काम ही नहीं था जो वो ना कर सके। कभी कभी मुझे उससे जलन भी होती थी कि उसका बेटा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग की थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।